मत्ती अध्याय 27। सुबह होते ही सभी प्रधान पुरोहितों और बुजुर्ग नेताओं ने यीशु को मार डालने के बारे में सलाह मशवरा किया। उनको बांधने के बाद वे पुंतियुस पिलातुस को सुपुर्द करने के लिए बाहर ले गए। तब यहूदा, जिसने यीशु को पकड़वाया था, यीशु को पकड़वाया जाता देख अपने आप को कोसने लगा। प्रधान महायाजकों और बुजुर्ग नेताओं के पास 30 चांदी के सिक्के वापस लाकर देते हुए उसने कहा,
एक निरपराध को धोखा देकर मैंने अपराध किया है।
उन लोगों ने जवाब दिया,
हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, तुम ही देखते बैठो।
उसने प्रार्थना भवन में उन सिक्कों को फेंक दिया और जाकर फांसी लगा ली। प्रधान पुरोहितों ने उन सिक्कों को उठाकर कहा,
उन्हें खजाने में रखना जायज नहीं, क्योंकि यह खून का दाम है।
उन्होंने सलाह मशवरा करके कुम्हार का खेत खरीदा ताकि विदेशियों को वहीं दफन किया जा सके, इसलिए उस खेत का नाम आज तक खून का खेत है। तब यर्मिया नबी की कही हुई बात पूरी हुई और उन्होंने 30 चांदी के सिक्के लिए, जो कि एक व्यक्ति का मूल्य आंका गया था। ये मूल्य भी इसराइलियों ने लगाया था और जैसा परमेश्वर ने हुक्म किया, इस पैसे से कुम्हार का खेत खरीदा गया। यीशु गवर्नर के सामने खड़े किए गए और गवर्नर ने उनसे पूछा,
क्या तुम यहूदियों के राजा हो?
यीशु ने जवाब में कहा,
तुम खुद ऐसा कह रहे हो।
प्रधान पुरोहितों और बुजुर्ग नेताओं के आरोप लगाने पर भी यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पिलातुस ने उनसे कहा,
क्या तुम सुन रहे हो कि वे तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं?
यीशु ने उनसे एक भी शब्द नहीं कहा, जिससे गवर्नर को बड़ी हैरानी हुई। उस त्योहार के दिन हर साल गवर्नर लोगों की पसंद के अनुसार एक कैदी को छोड़ दिया करता था। उस समय बरब्बा नाम का एक बहुत खतरनाक कैदी था, इसलिए जब वे इकट्ठे थे, पिलातुस ने उनसे कहा,
तुम्हारे लिए मैं किसको छोड़ दूं, बरब्बा को या मसीह कहलाने वाले यीशु को?
उसे मालूम था कि यीशु को ईर्ष्या की वजह से उसके हाथ सुपुर्द किया गया था। जब वह न्याय आसन पर बैठा था, उसकी पत्नी ने यह संदेश भेजा,
इस बेगुनाह आदमी के साथ कुछ भला बुरा ना करना। मैंने आज रात स्वप्न में देखा है कि इसकी वजह से मैंने बहुत पीड़ा सही।
लेकिन प्रधान पुरोहितों और बुजुर्ग अगुओं ने भीड़ को उकसाया कि वे बरब्बा को बचा लें और यीशु को मरवा डालें। गवर्नर ने पूछा,
तुम इन दोनों में से किसको आजाद देखना चाहते हो?
उन्होंने कहा,
बरब्बा को।
पिलातुस ने उनसे कहा,
तब मसीह कहलाने वाले यीशु के साथ मैं क्या करूं?
उन सबों ने ऊंची आवाज से कहा,
उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए।
गवर्नर ने कहा,
क्यों, उसने क्या बुराई की है?
वे और ऊंची आवाज से चिल्लाए,
उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए।
जब पिलातुस ने देखा कि मामला सुलझने के बजाय बिगड़ता जा रहा है, उसने भीड़ के सामने अपने हाथों को ये कहते हुए धोया,
मैं इस निरपराध इंसान के खून से मुक्त हूँ, अब तुम ही देखते बैठो।
तब सभी लोगों ने जवाब दिया,
इसके खून की सजा हमें और हमारी पीढ़ियों को मिले।
तब पिलातुस ने उनके लिए बरब्बा को आजाद कर दिया और यीशु की पिटाई कराने के बाद उन्हें क्रूस की सजा दिए जाने के लिए सौंप दिया। तब गवर्नर के सिपाही यीशु को गवर्नर के महल में ले गए और उनके चारों तरफ सिपाहियों का मजमा लग गया। उनके कपड़ों को उतार कर उन्हें बैंजनी चोगा पहनाया गया। कांटों का ताज बनाकर उन्होंने यीशु के सिर पर रखा और हाथ में एक सरकंडा दे दिया। उनके सामने गिर कर उनकी हंसी उड़ाते हुए वे कहने लगे,
यहूदियों के राजा, प्रणाम।
उन्होंने यीशु के मुंह पर थूका और सरकंडे से सिर पर मारा। हंसी उड़ाने के बाद उन्होंने उनके बैंजनी चोगे को उतार कर उन्हीं के कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने चल दिए। बाहर आने के बाद उन्होंने शिमोन कुरेनी को पकड़ा और जबरदस्ती उसके ऊपर क्रूस लाद दिया। जब वह खोपड़ी कहलवाने वाले स्थान गुलगुता तक पहुँचे, उन्होंने यीशु को पीने के लिए सिरका और पित मिला हुआ दाकरस दिया। उसको चखते ही यीशु ने पीने से इनकार कर दिया। उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर चिट्ठी उठाई और उनके कपड़े आपस में बांट लिए। तभी नबी के कहे हुए शब्द पूरे हुए कि उन्होंने आपस में मेरे कपड़े बांट लिए और मेरे कपड़ों पर चिट्ठी उठाई। वहीं बैठे बैठे वे यीशु को ताकते भी रहे। यीशु के सिर के ऊपर उन्होंने ये आरोप लिख दिया, ये यहूदियों के राजा यीशु हैं। उसी समय यीशु के साथ दो चोरों को भी लटकाया गया, एक को दाहिनी तरफ और दूसरे को बाईं तरफ। जो लोग वहां से गुजरते थे वे सभी अपने अपने सिरों को हिला हिला कर कहते थे,
तुम जो प्रार्थना भवन को बर्बाद करके 3 दिन में बनाने वाले थे, अपने आप को बचाओ। अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो क्रूस से नीचे उतर आओ।
इसी तरह से प्रधान पुरोहितों ने शिक्षकों और बुजुर्गों के साथ मिलकर हंसी उड़ाते हुए कहा,
उसने दूसरों को बचाया लेकिन अपने आप को न बचा सका। अगर वो इसराइल का राजा है तो क्रूस से नीचे उतर आए, हम भी विश्वास कर लेंगे। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, अगर वो चाहे तो आकर उसे बचाए, क्योंकि उसी ने तो दावा किया था कि वो परमेश्वर का पुत्र है।
इसी तरह से उन दोनों चोरों ने भी, जिन्हें दोनों तरफ लटकाया गया था, यीशु की हंसी उड़ाई। उसके बाद दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में घोर अंधेरा छाया रहा। करीब 3 बजे यीशु मसीह ऊंची आवाज में चिल्ला उठे,
एली एली लमा सबक्तनी।
इसका मतलब है, मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। वहां पर खड़े कुछ लोगों ने यह सुनकर कहा,
यह आदमी एलिया को बुला रहा है।
तुरंत उनमें से एक ने दौड़कर दाख मधु और सिरके में डुबोए स्पंज को एक सरकंडे पर रखकर यीशु को पीने के लिए दिया। बाकी लोगों ने कहा,
उसे चिल्लाने दो, अभी देखते हैं कि एलिया उसे बचाने आता है या नहीं।
यीशु ने ऊंची आवाज में चिल्लाने के बाद अपनी आत्मा त्याग दी। उसी समय तुरंत प्रार्थना भवन का पर्दा ऊपर से नीचे 2 हिस्सों में बंट गया। पृथ्वी डोल गई, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गईं और बहुत से संतों की देह जो सो चुके थे फिर से जी उठीं। वे जी उठने के बाद यरूशलेम गए, जहां बहुत से लोगों ने उन्हें देखा। सूबेदार और उसके साथ जो लोग चौकीदारी कर रहे थे भूकंप और दूसरी घटनाओं को देखकर डर कर कहने लगे,
ये तो सचमुच में परमेश्वर के पुत्र थे।
वहां बहुत सी महिलाएं जो यीशु की सेवा करती थीं और साथ साथ चली आई थीं, दूर से ताक रही थीं। उन्हीं में से मरियम मक्तलेनी, याकूब और योसेस की मां मरियम और जब्दी के बच्चों की मां थी। शाम होते होते अरमतिया का यूसुफ नाम अमीर आदमी, जो यीशु को मारने लगा था, आया। पिलातुस के पास जाकर उसने यीशु की देह मांगी। तब पिलातुस ने हुक्म दिया कि उसे यीशु की लाश दे दी जाए। उस लाश को यूसुफ ने साफ मलमल के कपड़े में लपेटकर अपनी उस नई कब्र में रखा, जिसे उसने चट्टान में खुदवाया था। उस कब्र के मुंह पर एक बड़े पत्थर को रखवाकर वह वहां से चला गया। मरियम मग्दलिनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने ही बैठी हुई थी। अगले दिन, जो कि तैयारी के दिन के बाद था, प्रधान पुरोहित और फरीसी पिलातुस के पास आकर कहने लगे,
महाशय, जीते जी उस धोखेबाज ने कहा था 3 दिन बाद वो जी उठेगा, इसलिए ये आज्ञा दें कि 3 दिन तक कब्र की रक्षा की जाए, नहीं तो कहीं उसके शिष्य उसकी लाश को चुराना ले जाएं और लोगों में ये बात फैला दें कि यीशु मरे हुओं में से जी उठे हैं। ये तो पहली गलती से ज्यादा बड़ी गलती होगी।
पिलातुस ने उनसे कहा,
तुम्हारे पास पहरेदार हैं, जितना हो सकता है उतना ज्यादा पहरा बढ़ा दो।
इसलिए उन्होंने जाकर पत्थर पर मोहर करके और संतरी को बिठाकर पहरा और ज्यादा कड़ा कर दिया।